नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत, ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की, संवाद और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। और पाकिस्तान श्रीलंका से जीत के बावजूद T20 विश्व कप क्रिकेट से बाहर, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका इसराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि खामेनेई की मौत ईरानी जनता के लिए अपने देश को वापस लेने का बड़ा अवसर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि बमबारी पूरे सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक जारी रहेगी। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने भी आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। खबरों के अनुसार हमलों में लगभग 40 ईरानी अधिकारी भी मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
खबरों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हवाई हमले के बाद हुई है, जिसमें ईरानी सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक वरिष्ठ इसराइली अधिकारी के अनुसार खामेनेई का शव बरामद किया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया और पूरे क्षेत्र में व्यापक जवाबी कार्रवाई हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के कार्यालयों के पास तेहरान समेत कई शहरों में विस्फोटों की खबर मिली। ईरान सरकारी मीडिया ने कम से कम 200 से अधिक लोगों की मौत और 700 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना दी है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
इस तनाव के कारण कई देश भी प्रभावित हुए हैं। अबूधाबी, बहरीन और कुवैत में विस्फोटों की सूचना मिली है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं और दुबई हवाई अड्डे पर उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। इराक ने भी अपना हवाई अड्डा क्षेत्र बंद कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल क्षेत्रीय तनाव के बीच खाड़ी देशों के कई विदेश मंत्रियों से बातचीत की और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी बातचीत साझा की।
डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन के साथ खाड़ी क्षेत्र की बदलती स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत इस बिगड़ती स्थिति से चिंतित है। उन्होंने भारतीय समुदाय के कल्याण के प्रति संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान से भी खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय शांति और भारतीय समुदाय की सुरक्षा में भारत की रुचि पर बल दिया। विदेश मंत्री ने कल शाम कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से भी बात की। उन्हें कतर की स्थिति से अवगत कराया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर दिए गए उनके आश्वासन का वे सम्मान करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी से क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात चिंता का विषय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बहरीन सरकार ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्री ने कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्रा जाबेर अल अहमद अल सभा से भी बात की। डॉक्टर जयशंकर ने तनाव बढ़ने पर भारत की चिंता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए कुवैत के विदेश मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन की वे सराहना करते हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पश्चिम एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए जारी सलाहों का पालन करने का आग्रह किया है। इसराइल स्थित भारतीय दूतावास ने देश में अस्थायी रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को अपनी पिछली सलाह का पालन करने और समय पर सहायता और संचार की सुविधा के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करने का अनुरोध किया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को लगातार बदल रही स्थिति को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके साथ ही अबूधाबी, रियाद, दमिश्क, बगदाद, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावासों ने मौजूदा भारतीय नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण आज 444 उड़ानें रद्द होने की संभावना जताई है। मंत्रालय ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय DGCA यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस के साथ मिलकर काम कर रहा है। एयर इंडिया ने आज रात 11:59 तक इस क्षेत्र के सभी गंतव्यों के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। एक अन्य परामर्श में एयर इंडिया ने कहा कि आज के लिए निर्धारित 28 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने ईरान पर अमरीका और इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों की निंदा की है। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र तथा विश्व को एक बड़े युद्ध से बचाने के लिए तत्काल बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है। श्री गुतरश ने कहा कि अमरीका और इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। श्री गुतरश ने ईरान के जवाबी हमलों की भी निंदा करते हुए कहा कि इनमें बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने अमरीकी सैन्य कार्रवाई को वैध बताया। इसराइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत डेनी डेनन ने हवाई हमलों का बचाव करते हुए कहा कि इसराइल के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यह हमला जरूरी था। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने परिषद को बताया कि हवाई हमले में सैकड़ों ईरानी नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं, जिसे उन्होंने युद्ध अपराध तथा मानवता के खिलाफ अपराध बताया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIN News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। दक्षिण अमरीकी देश बोलिविया में सैन्य विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या 22 हो गई है। यह हादसा शुक्रवार को पश्चिमी शहर एलेल्टो में हुआ, जो राजधानी लापास के पास स्थित है। दुर्घटनाग्रस्त विमान में 18 टन नई नोटों की खेप ले जा रही थी। हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें अधिकांश वे लोग हैं जो उस स्थान पर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा कर रहे थे जहां विमान आकर गिरा। मृतकों में 12 पुरुष, चालक दल का एक सदस्य, 6 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। C-130 हरक्यूलिस विमान सांताक्रूज से आ रहा था, तभी वो रनवे से फिसलकर पास खड़े वाहनों से टकरा गया। विमान में 8 लोग सवार थे और ये खेप बोलिविया के केंद्रीय बैंक के लिए लाई जा रही थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञ अब भी मलबे से अवशेष बरामद कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि बिखरी हुई नकदी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आगे लूटपाट रोकने के लिए पुलिस और सैन्य कर्मियों ने केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष डेविड एस्पिनोजा की मौजूदगी में नकदी के बक्सों को जला दिया। उन्होंने कहा कि ये नोट कानूनी रूप से वैध नहीं थे, क्योंकि वे कभी प्रचलन में नहीं आए थे। हालांकि उन्होंने ले जाई जा रही कुल राशि का खुलासा नहीं किया। रक्षा मंत्रालय विमानन अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। रोड शो, जनसंचार और घर घर जाकर प्रचार करने के साथ साथ राजनीतिक दल जेंजी आंदोलन के दौरान दृष्टिकोण के साथ मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन थापा मध्य प्रदेश के सरलाही 4 से चुनाव लड़ रहे हैं और खुद को नेपाल का युवा उन्मुख और सबसे अनुभवी राजनेता बता रहे हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल रुकुमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री केपीएस ओली झापा 5 से चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने चितवन को अपना गढ़ मानते हैं और एक बार फिर चितवन 2 से चुनाव लड़ रहे हैं। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का सामना आज वेस्टइंडीज से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस मैच का नतीजा टूर्नामेंट में भारत का भविष्य तय करेगा। वहीं दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर 8 के मैच में श्रीलंका पर 5 रन से जीत हासिल करने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के 100 रन और सलामी जोड़ीदार फखन जमार के 84 रन के बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाकर मैच जीत लिया। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल इस महीने के 4 और 5 तारीख को निर्धारित हैं, जबकि फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका और इसराइल ने हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत। ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। संवाद और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। और पाकिस्तान श्रीलंका से जीत के बावजूद T20 विश्व कप क्रिकेट से बाहर, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।